तुलसी की भावुकता का शेष अंश पृष्ठ 64। युद्धवीर के उदाहरणों से तो सारा लंका कांड भरा पड़ा है। उत्साह नामक भाव की भी व्यंजना अत्यंत उत्कर्ष को पहुंची हुई है और युद्ध के दृश्य चित्र भी बड़ा ही उग्र और प्रचंड है। वीर रस का वर्णन कौशल उन्होंने 3 शैलियों के भीतर दिखाया है। प्राचीन राजपूत काल के चारणों की छप्पे वाली ओजस्विनी शैली के भीतर, इधर के फुटकरिये कवियों की दंडक वाली शैली के भीतर और अपने निज की गीतिका वाली शैली के भीतर, नीचे तीनों का क्रमशः एक एक उदाहरण दिया जाता है। पहला, कतिहूँ बिपट भूधर उपारी परसेन बरखत, कतिहूँ बाजी सो बाजी मर्दी गजराज करखत, चरण चोट चटकन चकोट अरि उर सिर वज्जत, बिकट कटक बिदरत बार बारिद जिमि गज्जत, लंगूर लपेटत पटकी भट जयति राम जय उचरत, तुलसीस पवन नंदन अटल जुद क्रुद्ध कौतुक करत। दूसरा, दबकी दबोरे एक बाधिर में बोरे एक, मगन माही में एक गगन उड़ात हैं, पकड़ी पछारे कर चरण उघारे एक, चिरी फारी डारे एक मींजी मारे लात हैं, तुलसी लखत राम रावण विभुद बुधि चकपानी चंडीपति चंडिका सिहात हैं, बड़े बड़े बाइनत वीर बलवान पड़े धातुधान जू थप निपाते बात जाता है। 3, भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक, कसम से को दंड धुनि अति चंड सुनी मनुजात सब मारुत ग्रसे, मंदोदरी उरकप कंपति कमट भू भूधर त्रसे, चिक करहीं दिगजन दसन गहि मही देखी कौतुक सुर हसे। धनुष चढ़ाने के लिए राम और लक्ष्मण का उत्साह और धनुर्भंग की प्रचंडता का वर्णन भी अत्यंत वीरोल्लाहपूर्ण है। जनक के वचन पर उत्तेजित होकर लक्ष्मण कहते हैं, पृष्ठ 65, सुनहु भानु कुल कमल भानु, जो अब अनुशासन पाऊँ का बापुरो पिनाकू मिलगुन बंदर मेरु नवाबों, देखो निज किंकर को कौतुक क्यों कोदंड चढ़ाऊं, ले धैयो भंजी मृणाल ज्यो तो प्रभु अनुज कहावो। धनुष टूटने पर डिगती उर्बी अति गुरबी सबे पब्बे समुद्र सर, ब्याल बधिर तेही काल विकल दिग्पाल चराचर, दिग्यंत लरखरत परसत दस कंठ मुख भर, सूर विमान हिम भानु भानु संगति परस्पर, चौके विरंची शंकर सहित कोल कमट अहि कलमल्यो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि जब ही राम शिव धनु दल्यो। धनुर्भंग के इस वर्णन में प्रश्न उठता है कि इसमें प्रदर्शित उत्साह का अवलंबन क्या है। प्रचलित साहित्य ग्रंथ में देखिए तो युद्धवीर का आलंबन विजेतव्य ही मिलेगा, यह विजेतव्य शत्रु या प्रतिपक्षी ही हुआ करता है, अतः यहाँ विजेतव्य धनुष ही हो सकता है। पर पृथ्वी पर पड़ा हुआ यह जड़ धनुष मनुष्य के हृदय में उठाने या तोड़ने का उत्साह किस तरह जागृत करेगा यह समझते नहीं बनता, वह तो पड़ा पड़ा ललकार नहीं रहा है। यदि किसी मनुष्य में इतना उत्साह और बल है कि वह बड़ी बड़ी चट्टान को उठा सकता है, तो पहाड़ पर जाकर उसकी क्या दशा होगी। अतः हमारी समझ में उत्साह का आलंबन कोई विकट या दुष्कर कर्म ही होता है। लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम की व्याकुलता देख कार्य तत्परता की मूर्ति हनुमान कहते हैं, ज्यों अब अनुतप्त तासन पाओ तो चंद्र मही निचोरी चैल ज्यो आनी सुधा सिर नाओ, कै पातल दलो व्याला वली अमृत कुंड मही लाओ। भेदी भुवन करि भानु बाहिरो तुरत राहु ते ताओ, बिबुध बैद बरबस आनो धरि तो प्रभु अनुग कहाओ। पटको मीच नीच मूसक जो सबहि को पायु बहाओ। हनुमान के इस वीरो उत्साह का आलंबन क्या है, क्या चंद्रमा अश्विनी कुमार इत्यादि। खैर, इसका विस्तृत विवेचन अत्यंत किया जाएगा। यहाँ इतना ही निवेदन करके रसज्ञों से क्षमा चाहते हैं। अब अद्भुत रस का एक उदाहरण देकर यह प्रसंग समाप्त किया जाता है। हनुमान जी पहाड़ हाथ में लिए आकाश मार्ग से अपूर्व वेग के साथ उड़े जा रहे हैं। लिन्हो उखारी पहाड़ विशाल चल्यो तेहि काल बिरंग न लायो, मारुत नंदन मारुत को मन को खराज को बेग ल जायो, तिखी तुरा तुलसी कहतो पैहिये उपमा को समाऊ न आयो, मनो प्रच्छत परब की नीभ लीक लसी कपी यो धुकि धायो। पृष्ठ 66। इस पद के भीतर मारुत को, मन को, खगराज को इस वाक्यांश में कुछ दुष्कर्मत्व प्रतीक होता है। मन को सबसे पीछे होना चाहिए। मन का वेग जब कह चुके तब खगराज का वेग उसके सामने कुछ नहीं है, पर समग्र वर्णन से जो चित्त सामने खड़ा होता है उसके अद्भुत होने में कोई संतोष नहीं। गगनमंडल के बीच पहाड़ की एक लीक सी बंध जाना कोई साधारण व्यापार नहीं है। इस अद्भुतता की योजना भी एक स्वभाव सिद्धि व्यापार के आधार पर हुई है और प्रकृति का निरीक्षण सूचित करती है। यह सूचित करती है कि अत्यंत वेग से गमन करती हुई वस्तु की एक लकीर सी बन जाया करती है। इस बात पर कवि की दृष्टि गई है, जिसकी दृष्टि ऐसी ऐसी बातों पर न जाती हो वह कवि कैसा। प्रकृति के नाना रूपों को देखने के लिए कवि की आंखें खुली रहनी चाहिए और सबका प्रभाव ग्रहण करने के लिए उसका हृदय खुला रहना चाहिए। अद्भुत रस के इस आलंबन द्वारा गोस्वामी जी की वह स्वाभाविक विश्व व्यापार ग्राहिणी सहृदयता लक्षित होती है जो हिंदी के और किसी कवि में नहीं। इस स्वभाव सिद्ध अद्भुत व्यापार के सामने कमल पर कदली, कदली पर कुंड, शंख पर चंद्रमा आदि कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध रूपक अतिशयोक्ति के कागजी दृश्य का क्या चीज है। लड़कों के खेल हैं, बालकों या बाल रुचि वालों का मनोरंजन उनसे होता हो तो हो सकता है। गोस्वामी जी ने अपनी इस परिष्कृत और गंभीर रुचि का परिचय अलंकारों की योजना में बराबर दिया है। लंका दहन के प्रसंग में जहाँ हनुमान जी अपनी जलती हुई पूँछ इधर से उधर घुमाते हैं, वहाँ भी अपनी उत्प्रेक्षा और संदेह को वे इसी स्वभाव सिद्ध व्यापार पर टिकाते हैं। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लिलिबे को काल रसना पसारी है, कंधो वेम भी भीतिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। ध्यान से देखिए तो कई एक व्यापार जो देखने में केवल अलौकिकत्व विधायक प्रतीत होते हैं, हेतु उत्प्रेक्षा के व्यंग से अपना प्रकृत स्वरूप खोल देंगे। पथिक वेश में राम लक्ष्मण वन के मार्ग में चले जा रहे हैं। कोष्ठक में क्षमा कीजिएगा, यह दृश्य हमें बहुत मनोहर लगता है, इसी से बार बार सामने आया करता है। कोष्ठक बंद। गोस्वामी जी कहते हैं, जह जह जाहि देव रघुराया, तह तह मेघ करहि नभ छाया। जिस समय मेघखंड आकाश में बिखरे रहते हैं, उस समय पथिक के मार्ग में कभी धूप पड़ती है, कभी छाया। इस छाया पड़ने को देखकर किसी अवसर पर यदि कभी किसी साधारण पुरुष को भी कह दे कि मेघ भी हमारे ऊपर छाया करते चलते हैं, तो उसका यह कहना अस्वाभाविक न लगेगा। इस कथन द्वारा जिस प्रताप आदि की व्यंजना इष्ट होगी, वह उत्प्रेक्षा का हेतु हो जाएगा। प्राचीन कवियों में इस प्रकार की सुंदर स्वाभाविक उक्तियाँ अक्सर मिलती हैं, जिनमें से किसी किसी को लेकर और उन पर एक साथ कई प्रौढ़ोक्तियाँ लादकर पिछले खेवे के कवियों ने एक भद्दी इमारत खड़ी की है। फल इसका यह हुआ है कि उनमें अतिशयोक्ति ही अतिशयोक्ति रह गई है। जो कुछ स्वाभाविकता थी, वह जान कोष्ठक में अपनी कहिए या उन पुराने उक्तियों की कहिए, कोष्ठक बंद, लेकर भागी हैं। उदाहरण के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम में भौरा शकुंतला का पीछा किए हुए है और बार बार उसके मुंह की ओर जाता है। सलिल सिंहसंभ मुगदगदो रणुमलियन उज्जी भयूं ब्रदरण न मुहुरयो अविहट्ठई।